10 जून शुक्रवार का नमस्कार भारत फैसल मोहम्मद अली से। ओबामा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए किया हिलेरी क्लिंटन का समर्थन।
In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage, the compassion.
सुनवाएंगे वॉशिंगटन से एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की उठी मांग। विवादित फिल्म उड़ता पंजाब पर सेंसर बोर्ड से मुंबई हाई कोर्ट ने पूछे सवाल और अर्जुन अवार्ड विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज ने लगाया केरल के खेल मंत्री पर अपमान करने का इल्जाम।
You all, no one is elected in this body. All are selected by the last government.
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
अमरीकी राष्ट्रपति माफ कीजिएगा बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो हिलेरी क्लिंटन को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी दिए जाने का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये बयान डेमोक्रेटिक पार्टी से ही उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल बर्नी सैंडर्स से मुलाकात के बाद दिया। हिलेरी ने ट्विटर पर एक वीडियो लिंक शेयर किया है जिसमें ओबामा ने कहा है कि राष्ट्रपति की भूमिका के लिए हिलेरी सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली के अंतिम संस्कार यानी जनाजे में हजारों लोगों ने भाग लिया। मोहम्मद अली का पिछले सप्ताह निधन हो गया था। उनके जनाजे का आयोजन उनके गृहनगर लुईविल के फ्रीडम हॉल में किया गया। जब उनका पार्थिव शरीर हॉल में लाया गया तो लोगों ने शोक गीत गाया। इस मौके पर मुक्केबाजी और नागरिक अधिकारों के आंदोलन से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। कैट स्टीवंस के नाम से जाने जाने वाले संगीतकार यूसुफ इस्लाम ने कहा, मोहम्मद अली ने कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व किया था। वो सिर्फ एक मुक्केबाज नहीं थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विश्वासों के लिए खड़े हुए और उन्होंने उसके बारे में बात की। लोगों ने कुछ देर के लिए उन्हें पसंद नहीं किया क्योंकि वे उनके खिलाफ थे। मैं भी कभी कभी इस मामले में उनके जैसा ही अनुभव करता हूँ। और भी बहुत कुछ है जो मुझे आज यहाँ खींच लाया, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यह कि इस सुंदर व्यक्ति के लिए इज्जत। ये थे संगीतकार यूसुफ इस्लाम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। 13वीं शताब्दी के इस्लामी कवि और दार्शनिक जलाल अल दिन रूमी की मास्टरपीस का पर दावा करने की ईरान और तुर्की की कोशिशों का अफगानिस्तान ने विरोध किया है। साझा सांस्कृतिक विरासत मानते हुए मसनवी नाम की एक कविता को तुर्की और ईरान यूनेस्को में पंजीकृत करने पर राजी हो गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया है और कहा है कि रूमी का जन्म अफगानिस्तान में हुआ है। सूफी आध्यात्मिक गुरु जलाल अल दिन रूमी के माता पिता अरबी बोलते थे और जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा वो बाद में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। इतालवी कार निर्माता कंपनी फिएट ने अर्जेंटीना में अपनी नई कारों के साथ बांटे गए हैंडबुक वापस ले लिए हैं। महिला समूहों ने हैंडबुक को महिला विरोधी कहा था। हैंडबुक में कार का आनंद कैसे ले यह बताया गया था। कार चालक को सलाह दी गई थी कि वो अच्छे पैरों वाली महिला सहचालक खोजें और कहा गया था कि यदि महिला सहचालक ने छोटी स्कर्ट पहनी हो तो उन्हें चालक का ध्यान बनाए रखने और उसके भटकते हाथों से बचाने के लिए पीछे की सीट पर सफ़र करने दें। मामले में अर्जेंटीना में कंपनी के प्रतिनिधि ने माफी मांगी है। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को देश के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रचने के इल्जाम में 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, एक बार फिर से फैसल मोहम्मद अली से। आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत फिर से अमेरिका से ही कर रहे हैं, लेकिन आज खबर यह है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की उम्मीदवारी को समर्थन दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का टिकट हासिल करने के लिए दौड़ में शामिल हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बात की वॉशिंगटन में बीबीसी हिंदी के संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से और ओबामा के हिलेरी को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछा।
जी हाँ, ये काफी राजनीतिक गहमा गहमी वाला दिन था यहाँ वॉशिंगटन में। पहले बर्नी सैंडर्स ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा और उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और उसके कुछ घंटों के बाद ही एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में हिलेरी क्लिंटन की उम्मीदवारी को राष्ट्रपति ओबामा ने भरपूर समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्लिंटन को उम्मीदवारी हासिल करने की बधाई के साथ साथ उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने.
In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage, the compassion, and the heart to get the job done. And I say that as somebody who had.
Obama कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि इस कुर्सी के लिए मैंने कभी किसी में इतनी काबिलियत देखी है. उनमें हिम्मत है और काम को पूरा करने की लगन है. और उन्होंने कहा कि वो हिलरी के लिए चुनावी रैली करने के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही उन्होंने बर्नी सैंडर्स के अभियान की भी काफी तारीफ की और कहा कि उन्होंने आर्थिक समानता जैसे मामलों पर जोर देकर पार्टी का जो एजेंडा है उसको और मजबूत किया है.
ब्रिजेश उपाध्याय, ये बताएं कि अब जाहिर है कि क्लिंटन अब और करीब हो गए हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बर्नी सैंडर्स जिनके बात कर रहे थे वो भी जो इस दौड़ में शामिल है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है ओबामा ने जो समर्थन किया है हिलेरी क्लिंटन का?
देखिए, बर्नी सैंडर्स की सीधी तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सैंडर्स ने आज ओबामा से मुलाकात की थी और उसके बाद कहा उन्होंने कि वो आखिरी प्राइमरी चुनाव जो अगले मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में है उसमें भाग लेंगे और जिन मुद्दों की खासतौर से आर्थिक असमानता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, कॉलेज की मुफ्त पढ़ाई और जो चुनावी अभियान में जो पैसा बहाया जाता है उन मुद्दों को लेकर वो जुलाई में होने वाले डेमोक्रेटिक अधिवेशन में शामिल होंगे. लेकिन पहली बार उन्होंने ये नहीं कहा कि अधिवेशन में वो सुपर डेलीगेट्स के वोट्स के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, बल्कि उन्होंने जल्द ही हिलरी क्लिंटन से मुलाकात करने की बात की. सुनिए क्या कहा उन्होंने.
I spoke briefly to Secretary Clinton on Tuesday night and I congratulated her on her very strong campaign. I look forward to meeting with her in the near
future. सैंडर्स कह रहे थे कि मंगलवार की जीत के बाद उन्होंने हिलरी क्लिंटन को फोन पर बधाई दी और आने वाले दिनों में उनसे वो मुलाकात करके ट्रंप को कैसे हराया जाए उस पर बात करेंगे. तो सीधे स्पष्ट शब्दों में उन्होंने क्लिंटन को समर्थन देने की बात नहीं की है, लेकिन ये इशारा था कि वो हकीकत को अब स्वीकार कर रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन पार्टी की उम्मीदवार बन गई हैं.
ब्रिजेश, हमने ये बात कर ली कि ओबामा ने क्या कहा, साथ साथ बर्नी सैंडर्स ने क्या कहा, लेकिन जिनको लेकर ये सारी बातें हो रही हैं उन्होंने क्या कहा? हिलरी क्लिंटन ने कोई प्रतिक्रिया दी ओबामा के समर्थन का वीडियो आने के बाद?
जी हाँ, हिलरी क्लिंटन ने तहे दिल से ओबामा का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने याद किया कि 2008 में कैसे वो उनके खिलाफ खड़ी थी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए और फिर कहा कि जब हम लोगों ने साथ में काम किया है तो न सिर्फ हम एक अच्छे कुलीग बने बल्कि अब बहुत अच्छे हम लोग दोस्त भी बने हैं. लेकिन उसके मिनटों के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, ओबामा ने अभी अभी कपटी हिलरी का समर्थन किया है. दरअसल वो ओबामा प्रशासन के और 4 साल चाहते हैं लेकिन कोई और ऐसा नहीं चाहता. और उसके फौरन बाद हिलरी क्लिंटन का जवाब आया, अपना अकाउंट डिलीट कर लो. उसके जवाब में रिपब्लिकन पार्टी के एक अधिकारी का ट्वीट आया कि हाँ, डिलीट करने के बारे में तो हिलरी को खासा तजुर्बा है, आखिर उन्होंने अपने 30,000 ईमेल्स डिलीट कर दिए थे. यानी जो ईमेल विवाद चल रहा है हिलरी क्लिंटन का, उस पर निशाना साधा उन्होंने.
बीबीसी हिंदी के संवाददाता ब्रिजेश उपाध्याय. अमरीका के बाद सीधे रुख करते हैं पाकिस्तान का. ऑनर किलिंग की बात हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, वो पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक शक्ल लेता जा रहा है. कल ही हमने आपको एक रिपोर्ट सुनवाई थी कि पुलिस के मुताबिक किस तरह एक मां ने अपनी बेटी को महज इसीलिए जला डाला क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी की थी. इस ताज़ा वारदात के बाद पाकिस्तानी संसद में ये गूंज उठी कि इसे रोकने के लिए कानून बनाया जाए. मिडिल एसेक्स यूनिवर्सिटी के इस्लामिक मामलों के प्रोफेसर ताहिर वास्ती से हमारी साथी अंबर खैरी ने पूछा कि इस तरह के अपराध पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है.
कसास और दियत के आने से पाकिस्तान में जो मर्डर रेट है वो मेरा ख्याल में 100 गुना बढ़ गया है पुराने मर्डर रेट से. तो सबसे बुनियादी तब्दीली तो ये आई है कि पाकिस्तान में अगर कोई जुर्म करना नहायत आसान है तो उस जुर्म का नाम है कत्ल करना, जिसके बाद बहुत आसानी से अदालत से और अदालत के बाहर मामलात को तय किए जा सकते हैं.
तो डॉक्टर ताहिर वास्ती, ये बताएं कि किसास और दियत के कानून का हम बात कर रहे हैं तो इज्जत के नाम पर कत्ल करने वाले किस तरह किसास और दियत के कानून से फ़ायदा उठा रहे हैं?
उसकी बुनियादी वजह उन चंद क्लॉजेज की जो किसास और दियत में शामिल किए गए हैं है कि उन्होंने ये कह दिया है कि जो सुलह है वो वली के दरमियान हो सकती है और वली माफ कर सकता है कातिल को. तो ऑनर किलिंग में कत्ल करने वाला अक्सर वली का भाई, वली या खुद वली या वली का करीबी रिश्तेदार होता है. तो उस सूरत में जो कत्ल करने वाला है और जिसने माफ करना है وہ دونوں کا آپس میں ایموشنل اور بلڈ بانڈ ہوتا ہے موجود, تو وہ پھر یہ فیملی فیصلہ کرتی ہے کہ ایک تو مر گیا ہے تو دوسرے کو جو ہے دار پہ کیوں چڑھوا دیں, تو وہ پھر معافی ہو جاتی ہے اور آسانی سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے.
یعنی وہ ریاست کے خلاف جرم نہیں ہوتا, اٹس ناٹ اے کرائم اگینسٹ سٹیٹ نہیں ہوتا.
بنیادی طور پہ ہمارے قصاص اندیت لاء میں جو خرابی پیدا کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اس قانون کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ لاء ہے, یہ نو مور پبلک لاء, یعنی قتل کرنا ایک پرائیویٹ میٹر ہے, یہ پبلک میٹر نہیں ہے. اب تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے بعد شاید ٹیررزم کو انہوں نے کہا ہے کہ پبلک مرڈر ہے, لیکن جو فیملیز میں یہ جو عام مرڈر ہیں وہ پرائیویٹ لاء ہے, جو قرآن سنت اور عقل کی بالکل خلاف بات ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات میں بہتری کیا قصاص و دیت کے قانون کو ختم کر کے ہو سکتی ہے, لائی جا سکتی ہے, یا پھر اس قانون میں تبدیلی سے بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے؟
دیکھیے, میں ہمیشہ پاکستان کے معاملے میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی ہم یہ پیدا کرتے ہیں کہ کسی قانون کو ہم اسلام کے نام پر آسانی سے بنا تو سکتے ہیں, لیکن اس میں جو بنیادی سقم پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ پھر اس قانون کو ختم کرنا ہمارے اور آپ کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اسلامی قانون ہے, یہ ہماری پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے, اور چونکہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے تو لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ جو اسلام کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے آپ اس کا نام قصاص و دیت ہی رکھیے, مگر اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بنائیں, اس کو عرب ٹرائبل کلچر کی روشنی میں نہ بنائیں, اور جو آج کے دور کے معاملات ہیں ان کو سامنے رکھیں.
مڈل ایسکس یونیورسٹی میں اسلامی قانون کے پروفیسر طاہر واسطی وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں آنر کلنگ جیسے اپرادھ کیوں بڑھ رہے ہیں.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 31, 25 اور 19 میٹر بینڈ, یعنی 9835, 9915, 11995 اور 15510 کلو ہرٹز, اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
فلم اڑتا پنجاب پر ووادوں کے اڑنے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے وہ رک نہیں رہا. بمبئی ہائی کورٹ نے سنسر بورڈ سے پوچھا ہے کہ وہ فلم سے پنجاب شبد ہٹانے کی بات کیوں کر رہا ہے. سنسر بورڈ نے فلم میں قریب 13 بدلاؤ کرنے کو کہا تھا, جس میں فلم کے ٹائٹل سے پنجاب نام ہٹانے کا سجھاؤ بھی شامل ہے. ہماری سہیوگی سوشیلا سنگھ نے ممبئی میں بی بی سی سنواداتا سوشانت موہن سے اس بارے میں بات کی.
دیکھیے, سب سے پہلے جو ہائی کورٹ نے ٹپنی کی وہ یہ کہ آخر سینسر بورڈ اس فلم کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑا ہوا ہے, آخر کیا کارن ہے کہ وہ اتنی شدت سے اس فلم کے اندر یہ کٹس لگوانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی گو گوا گون نام کی ایک فلم کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا سینسر بورڈ کے دوارا ہی, اس میں بھی ڈرگس کا ذکر تھا اور وہ ساری آپتیاں تھی, ایک راجیہ کا نام تھا, لیکن صرف اڑتا پنجاب کو لے کر ہی ساری پریشانیاں کیوں کھڑی ہو رہی ہے, اس بات کا جواب بورڈ نے مانگا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پنجاب کا ذکر آنا اس فلم میں سوابھاوک ہے, تو اس کو ہٹایا جانا کیوں ضروری مانتا ہے بورڈ, اس بات پر صفائی مانگی.
جی, اور یہ معاملہ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس معاملے نے راجنیتک طول پکڑ لیا ہے, حالانکہ پنجاب کے جو اپ مکھیہ منتری ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس فلم سے سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کیا اب کیا چل کیا رہا ہے اس پورے معاملے پر؟
اور ابھی بہوجن سماج وادی پارٹی کی سپریمو مایاوتی بھی اس معاملے میں کود پڑی ہے, اروند کیجریوال جو کہ دلی کے مکھیہ منتری ہیں انہوں نے بھی اس فلم کو لے کر بیان دیا کہ صاف دکھتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا اس وواد سے تار جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں ورودھی دل کے نیتا کیپٹن امریندر سنگھ نے بھی انوراگ کشیپ کو یہ پرستاو دیا کہ وہ اپنی فلم کی سی ڈی انہیں بھیجیں اور 17 تاریخ کو فلم باقاعدہ پنجاب میں ریلیز کروائیں گے کیپٹن امریندر سنگھ. تو اس پورے وواد میں راجنیتک رنگ تو پکڑ ہی لیا ہے.
یہ تھے بی بی سی سنواداتا سوشانت موہن. اور اب سنتے ہیں کہ یہ اخباروں میں کیا آج چھپا ہے. پانسی داس بتائیے.
فیصل جی, مودی کی امریکہ اور میکسیکو یاترا پر دوسرے دیشوں کی پرتکریا, بہار میں 3 دن میں 200 نیل ہاں وہ لوٹ آئے ہیں, لیکن ان کی یاترا پر دوسرے دیشوں کی ٹپنیاں آ رہی ہیں. बिहार में 3 दिन में 250 नीलगायों की मौत के अलावा फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर सेंसर बोर्ड के साथ चल रहे विवाद को लगभग हर अखबार ने जगह दी है, लेकिन इसके साथ ही और भी दूसरी दिलचस्प खबरों को जगह दी है जिन पर हम एक नज़र डालेंगे। अंग्रेजी के दी स्टेट्समैन ने खबर दी है कि बिहार के मोतिहारी जिले में एक सिविल कोर्ट के जज निशांत कुमार प्रियदर्शी से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की घटना सामने आई है। जज को धमकी भी दी गई है कि समय पर पैसे नहीं पहुंचे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। दी ट्रिब्यून में छपी एक खबर के अनुसार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2 साल में काम और ईमानदार कोशिशों के से देश की सड़कों का हाल ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। उन्होंने कहा है कि देश में सड़क हादसों में हर रोज़ औसतन 400 लोगों की मौत हो जाती है और इसका मुख्य कारण है गलत इंजीनियरिंग। अखबार में छपी एक अन्य खबर के मुताबिक लंदन में दी बुनियादी नाम से एक नया रेस्तरां खुला है जहां ग्राहकों को बेहद प्राकृतिक माहौल में खाना परोसा जाता है, यानी खाने वालों को बिना कपड़ों के ही पकवानों का आनंद लेना होगा। जो लोग कपड़े नहीं उतारना चाहते उनके लिए यहाँ अलग व्यवस्था की गई है।
जो कपड़े नहीं उतारेंगे वो अप्राकृतिक हो जाएंगे।
लंदन का यह ऐसा पहला रेस्तरां है। इसके बाद जनसत्ता में खबर छपी है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के एक विधायक प्रमोद गुप्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र औरैया जिले के बिधूना में रामलीला मैदान पर कब्जा कर वहां आलीशान भवन बनवा लिया है और इसमें वे खुद रहने भी लगे हैं। पूर्व मंत्री विनय शाक्य ने इसकी शिकायत की है और कहा है कि प्रमोद मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं और इसलिए प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। एक और खबर है उत्तर प्रदेश से ही। समाजवादी नेता के काफिले में एक फर्जी पुलिस जिप्सी दौड़ती थी। ये खबर दैनिक जागरण के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। अखबार का कहना है कि मेरठ में पुलिस को एक फर्जी पुलिस जिप्सी के बारे में शिकायत मिली थी जो शहर में गश्त लगा रही थी। बाद में पता चला कि श्रम विभाग के सलाहकार मोहम्मद अब्बास के काफिले में यह जिप्सी थी।
अच्छा।
मोहम्मद अब्बास का कहना
तो
है
असली
कि
थी ना?
जिप्सी असली थी। उनका कहना है कि ये जिप्सी उन्हें अमित जानी ने गिफ्ट की है। अमित जानी आपको याद होगा, JNU छात्र नेता कन्हैया कुमार को हत्या की धमकी इन्होंने दी थी।
अच्छा।
अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार मथुरा में पुलिस ने बताया है कि रामवृक्ष यादव चोरी की गाड़ियों में चलते थे। रामवृक्ष यादव की हाल में ऑपरेशन जवाहर बाग में मौत हो गई थी।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए मानसी दास। हम आपको ओलंपिक पर खास कार्यक्रम सुनवा रहे हैं, चलो रियो, आज शाम सुने।
चलो रियो, चलो रियो के आज के अंक में, जब आजादी के बाद इंग्लैंड की धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा ऊपर गया, कहानी 1948 हॉकी स्वर्ण की,
जब हमने 4 गोल कर दिए तो काफी इंग्लैंड के जो वहाँ लोग थे वो भी इंडिया के हक में शोर कर रहे थे, कम ऑन इंडिया, मेक इट हाफ ए डजन, मेक इट हाफ ए डजन।
बात करेंगे हेम्स पुरस्कार विजेता और अपने जमाने में हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू की।
जब वो लौटे थे तो कहते हैं कि वर्ल्ड में ये हाहाकार मचा था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट इन हॉकी कोई न देखा गया है न सुना गया है, और इंटरनेशनल प्रेस ने उनको पहली बार किसी से अगर कंपेयर किया था, एंड ही वाज कॉल्ड द ब्रैडमैन ऑफ वर्ल्ड हॉकी।
और आपको मिलवाएंगे रियो में पदक की दावेदार तीरंदाज दीपिका कुमारी से।
शाम में सुना ना भूलिए। केंद्र सरकार का नक्शे को लेकर तैयार हो रहा कानून बहस का मुद्दा बना हुआ है, खासतौर पर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में। इसमें प्रावधान है कि जो भी संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत का गलत नक्शा दिखाएगा उसके खिलाफ न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उसे जेल भी हो सकती है। इसके मुताबिक ऐसा हर वो नक्शा गलत होगा जिसमें नियंत्रण रेखा या LOC और अक्साई चीन को भारत से बाहर दिखाया जाएगा। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का मुजफ्फराबाद भी इसके हिसाब से भारत का हिस्सा होगा। माजिद जहांगीर ने बात की कश्मीर सूबे के कुछ छात्रों और टीचरों से।
भारत सरकार के हिसाब से ऐसा हर नक्शा गलत होगा जिसमें नियंत्रण रेखा यानी LOC और चीन के नियंत्रण में मौजूद अक्साई चीन को भारत के भीतर नहीं दिखाया गया है, यानी भारत में बच्चों को 1947 के कश्मीर युद्ध और 1962 के चीन के साथ युद्ध के बारे में पढ़ाया जा सकता है लेकिन उसे नक्शे पर दिखाना जुर्म होगा। जम्मू कश्मीर PDP और BJP सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री नईम अख्तर इस प्रस्तावित कानून पर कुछ भी कहने से बचते रहे।
सही कानून है या गलत कानून है?
I am not saying anything.
कुछ भी मान के लिए पहले
विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद मुट्टू इस प्रस्तावित कानून पर बताते हैं।
सर चटनी का मुझको लगता है कि ये कानून से लागू हो सकता है, ठीक है सर, लेकिन ये सारे जो मसले मसाइल है वाला सर उसे एक मुस्लिम गवर्नमेंट बनना पड़ेगा कि कश्मीर एक जनाजे मसला माना जाता है और जब तक इसका हल नहीं।
भारत सरकार के हिसाब से भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर राज्य का जो सही नक्शा है उसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को भारतीय शहर के तौर पर दिखाया गया है। भारत प्रशासित कश्मीर में सरकारी और निजी स्कूलों में कश्मीर मसले के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उरी में BA की पढ़ाई कर रहे छात्र तारिक अहमद कहते हैं,
जम्मू कश्मीर का स्टेट मैप देखेंगे जो इशू है जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बनता है, मुजफ्फराबाद जो भी है वो भी दिखाया जाता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तो सर जब हम रियलिटी में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ 12 किलोमीटर आगे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो सर हम भी जब मैप के हिसाब से तो हम देखते हैं चलो यार ये अपना हिस्सा है, जब हम वहाँ जाएंगे हमें नहीं जाने देता है। क्यों नहीं जाने देता? अगर मैप पे आप दिखा रहे हो यार ये हमारा हिस्सा है, ये टेरिटरी हमारी है, तो रियलिटी क्या है?
के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षक कहते हैं कि जो कुछ भी पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक छात्रों को पढ़ाया जाता है उससे ये साफ नहीं होता है कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत के नियंत्रण में आ गया। साजिद कहते हैं,
मतलब अनेवन होता है, मतलब ये कश्मीर कैसे अंडर द डोमिनेंस ऑफ इंडियन आ गया।
जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी सिलेबस में भी 1957 तक का कश्मीर का इतिहास पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बारे में यहाँ की स्कूली किताबों में कुछ भी नहीं बताया जाता है। नक्शे वाले प्रस्तावित कानून पर खुर्शीद अहमद ने कहा कि ये फैसला गलत है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विवादित मुद्दा है।
तो ये ड्राफ्ट ही है, मेरे हिसाब से ये ड्राफ्ट गलत है क्योंकि जो कश्मीर है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जब तक कि इसका कोई पुख्ता हल ना निकले तब तक इंडिया इसको अपने मैप के साथ दिखा नहीं सकती।
वहीं शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गुल महमद वानी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा नक्शों की सियासत रही है और अब जो प्रस्तावित कानून बनाया गया है वो जिंदा नहीं रह सकता है।
मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर पाएगा क्योंकि स्टेट्स को अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान स्टेट को इनको अल्टीमेटली जो भी इनके मसाइल आपस में है वो इनको निगोशिएबल तरीके से हल करने पड़ेंगे। बाकी ये हमेशा अगर आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का मैप उसका एक बड़ा एक पॉलिटिक्स रही है, ये पहली बार नहीं है।
इस सब के बीच जम्मू कश्मीर की PDP और BJP सरकार के प्रवक्ता ने अपनी सरकार की राय इस कानून पर आखिर क्यों नहीं दी। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
एक विवाद और भी, इस बार खिलाड़ी या पूर्व खिलाड़ी कहें और एक राजनेता की। केरल के खेल मंत्री इस बार फिर से एक बार सुर्खियों में है। अर्जुन पुरस्कार विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज ने खेल मंत्री EP जयराजन पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। पी जयराजन ये वही शख्स हैं जिन्होंने चंद दिनों पहले बॉक्सर मोहम्मद अली को केरल का बताया था। पूरे ब्यौरे के साथ इमरान कुरैशी।
राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने केरल के खेल मंत्री EP जयराजन पर अपमान करने का आरोप लगाया है। केरल खेल परिषद के अध्यक्ष अंजू जॉर्ज ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से शिकायत भी की है। अंजू जॉर्ज का कहना था कि मंत्री ने पिछली सरकार के करीबी होने का आरोप लगाया। अंजू जॉर्ज ने BBC से कहा,
He told, you all, no one is elected in this body. All are selected by the last government.
ये खेल परिषद के सदस्यों की मंत्री के साथ पहली बैठक थी। मेरे साथ खेल परिषद के दूसरे अधिकारी भी थे। मंत्री महोदय ने कहा कि आपको पिछली सरकार ने चुना था, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि हम ना कांग्रेस या BJP या कम्युनिस्ट सरकार के समर्थक हैं, हम सिर्फ खिलाड़ी हैं और सिर्फ खेल से ही संबंध है। ये थे अंजू बॉबी जॉर्ज के शब्द। साल 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतकर इतिहास रचने वाली अंजू जॉर्ज का कहना है कि उन्होंने मंत्री को स्पष्ट कर दिया कि अगर वो उनको खेल परिषद से हटाना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। मंत्री के बर्ताव पर अंजू जॉर्ज ने मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन से भी मुलाकात की और उनका बना रुख स्पष्ट कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री इस पूरे विषय को दूसरे नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कहा,
विमान उपयोग
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे अपमान कहा जा सकता है। मंत्री ने हमारे से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने हवाई यात्रा के बारे में पूछा था। हम नहीं समझते कि इसमें कोई तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। उनको जो रियायतें दी गई थी वो हम मानते हैं कि वो ठीक नहीं थी, और हमारा भी मानना है कि ये एक खेल व्यक्ति हैं। ये थे पिनाराई विजयन के शब्द। विजयन का हवाई यात्रा का मतलब यह है कि अंजू जॉर्ज बेंगलुरु में रहती हैं और जब कभी वे केरल जाते हैं तो उनको खेल परिषद के खाते से हवाई टिकट दिया जाता है। पिछले हफ्ते ही खेल मंत्री सुर्खियों में आए थे जब वे बॉक्सिंग मुद्रलेख मोहम्मद अली को केरल के ही खिलाड़ी मानकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब यह उनका नया विवाद है। जब कभी सरकार बदलती है, ये देखा गया है कि वो अपने सदस्यों को पदों पर लाना चाहती है। शायद ईपी जयराजन के तरीके कुछ अलग हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरेशी।
और अब सुनते हैं खेल की कुछ और खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट सीजन की घोषणा कर दी है। भारत अपने घरेलू सीजन की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से करेगी जो अक्टूबर में होगी। बोर्ड ने बताया कि राजकोट, वाइजैक, पुणे, धर्मशाला, रांची और इंदौर जैसी जगहों पर आगामी सीजन के लिए पहली बार टेस्ट मैचों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय टीम यहां 13 टेस्ट, 8 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। भारतीय टीम का घरेलू सीजन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से शुरू होगा जिसमें 3 टेस्ट और 5 वनडे है। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ष 2017 में फरवरी मार्च में भारत का दौरा करेगी। इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। यही नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी 1 टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत आएगी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा का मानना है कि ये मौका है विराट कोहली के लिए अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में साबित करने का।
भारतीय क्रिकेट अब जो सफेद कपड़ों में नजर आएगी, मौका है विराट कोहली के लिए बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को एक बेहतरीन टेस्ट कप्तान साबित करने के लिए, क्योंकि आप इतने सारे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। ये मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा मौका है ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए।
वही हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज से लंदन में शुरू होने जा रही IHF चैंपियंस ट्रॉफी में गत ओलंपिक चैंपियन जर्मनी से भिड़ेगी। अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक खेलों से पहले ये आखिरी बड़ा टूर्नामेंट है। पुरुष टीम का लक्ष्य इस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करना होगा क्योंकि रियो के लिए उनको अपनी उम्मीदें मजबूत करनी है। पुरुषों के राउंड रॉबिन मैच 16 जून को खत्म होंगे और फाइनल मैच 17 जून को खेला जाएगा। पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह का मानना है कि ये टूर्नामेंट बहुत जरूरी है पुरुष हॉकी टीम के लिए।
ओलंपिक से पहले एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे प्लेयर्स को, एक किस्म के ट्रायल भी हो जाएंगे और पता लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे वो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और इसमें से जो भी टीम है खेल रही है, ऑलमोस्ट कोरिया हॉकी टीम सारी ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही है, तो हमारी टीम के लिए बड़ा अच्छा मौका है। जो अपनी उन्होंने वर्कआउट किए उसको आजमा सकते हैं वो, तो एक किस्म की ये सिलेक्शन भी है प्लेयर की और हर एक प्लेयर को अपना दिखाना पड़ेगा वेयर दे स्टैंड।
उधर बैडमिंटन में भारत की साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। साइना ने महिला एकल मुकाबले के दूसरे दौर में मलेशिया की गौ जीन वई को सीधे सेटों में 21-12, 21-14 से हराया और पुरुष के दूसरे दौर के एकल मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया के सोनी कॉनकोरो को 21-19, 21-12 से मात दी। और भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर कि वो इस बार रियो पैरालंपिक में हिस्सा ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने भारतीय पैरालंपिक समिति पर पिछले साल लगा प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटा दिया है, जिससे भारतीय खिलाड़ी इस साल रियो पैरालंपिक में खेल सकेंगे।
कार्यक्रम खात्मे की तरफ बढ़ा है, लेकिन फिलहाल सुने BBC समाचार।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो हिलरी क्लिंटन को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी दिए जाने का समर्थन करते हैं। मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली के अंतिम संस्कार यानी जनाजे में हजारों लोगों ने भाग लिया। मोहम्मद अली का पिछले सप्ताह निधन हो गया था। 13वीं शताब्दी के इस्लामी कवि और दार्शनिक जलाल अल दिन रूमी की मास्टरपीस पर दावा करने की ईरान और तुर्की की कोशिशों का अफगानिस्तान ने विरोध किया है। इतालवी कार निर्माता फिएट ने अर्जेंटीना में अपनी नई कारों के साथ बांटे गए हैंडबुक वापस ले लिए हैं। महिला समूहों ने हैंडबुक को महिला विरोधी कहा था। BBC समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे हेमंत कुशवाहा। एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर से होगी मुलाकात। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें और अपने कमेंट्स वहां दें। नमस्कार।